जो लोग दूर बैठे हैं सब लोग कृपा करके आगे आइए, कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी। जय हो जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधीश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदे की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिंपल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंपल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंपल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। चूंकि रामनवमी बहुत निकट आ रही है इसलिए हम लोग आजकल राम कथा सुन रहे हैं। आज हम सुनेंगे किष्किंधा कांड से कुछ घटना, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। ये घटना उस समय की है कि सीता जी का अपहरण हो गया है और राम लक्ष्मण सीता की खोज कर रहे हैं। ये कथा सुना रहे हैं महादेव जी। कौन सुना रहे हैं? महादेव जी कथा सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? पार्वती जी को, अपनी पत्नी को ये कथा सुना रहे हैं शिव जी। तो महादेव जी बोले, हे पार्वती, श्री राम लक्ष्मण के सहित धीरे धीरे पंपा सरोवर के किनारे आए। उस सुंदर सरोवर को देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उसका विस्तार एक कोस का था। सरोवर कितना बड़ा है? विस्तार एक कोस। एक कोस का मतलब 2 मील, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का विस्तार, और अति निर्मल अगाध जल भरा है, और सब ओर खिले हुए कमल, कहलार, कुमुद, उत्पल आदि सब सुशोभित हो रहे हैं। उस सरोवर में जहाँ तहाँ हंस और कारंडव पक्षी विहार कर रहे थे। चक्रवाक शोभा बढ़ा रहे हैं। जल कुक्कुट, कोयष्टी और क्रौंच आदि पक्षियों की कलरव से शोभायमान हो रहा था। चित्र विचित्र पुष्प लताओं से परिपूर्ण और नाना प्रकार के फल वाले वृक्षों से घिरा हुआ था, और उसका कमल केसर से सुगंधित जल सज्जनों के चित्त के समान स्वच्छ था। नाना पुष्पलता किरणम नाना फल समावृतम सताम मनः स्वच्छ जलम पद्म किंजल के वासितम। वहां पहुंचने पर छोटे भाई लक्ष्मण के सहित श्री राम ने आचमन किया और सरोवर का शीतल जल पिया, और फिर किनारे किनारे शीतल छाया युक्त मार्ग से चलने लगे। जा रहे हैं जहाँ छाया है, वृक्षों की शीतल छाया है, किनारे किनारे जा रहे हैं। तत्रोपस्पृश सलिलम पीत्वा श्रमहरम विभुम सानुजः सरसस्तीरे शीतलेन पथायय। इस प्रकार जटा बलकल धारण किए परम पराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण जब हाथ में धनुष बाण लिए विविध वृक्षों और पर्वत की शोभा को देखते हुए ऋषिमुख पर्वत के साथ साथ चल रहे थे। उस समय 4 मंत्रियों के सहित पर्वत के शिखर पर बैठे हुए सुग्रीव ने उन्हें उधर जाते देखा। किसने देखा? सुग्रीव ने देखा। किसको देखा? राम लक्ष्मण को देखा। तो वो सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ गया। क्यों? सुग्रीव बहुत भयभीत है। सुग्रीव भयभीत होकर के इस पर्वत पर निवास करता है, क्योंकि यहाँ
बाली को शाप है कि बाली अगर आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो बाली के भय से सुग्रीव इस स्थान में रहता है। और जब सुग्रीव ने देखा किनको, जिनको कभी नहीं देखा था, राम लक्ष्मण दो बहुत वीर पुरुष हैं जो यहाँ इधर निकल रहे हैं, यहाँ से पास, यहाँ के पास से निकल रहे हैं। तो उसको शंका हुई, सुग्रीव को शंका हुई कि बाली ने शायद भेजा हो इनको मुझे मारने के लिए। तो भयभीत होकर के सबसे ऊंचे शिखर में चढ़ गया अपनी सुरक्षा के लिए। सुग्रीवस्तु गिरेर्मूर्ध्नि चतुर्भिषा वानर स्थित्वा ददर्श तोयान्ता वारुरोह गिरे शिरः। फिर भयभीत होकर हनुमान जी से बोला, हनुमान जी से क्या बोला, मित्र देखो ये दो वीर पुरुष कौन है। सुग्रीव ने कहा, किससे कहा, हनुमान जी से कहा कि देखो ये दो वीर पुरुष कौन है, तुम्हारा कल्याण हो तुम ब्राह्मण के वेश में इनके पास जाकर ये मालूम करो कि कौन है। ब्राह्मण के वेश में क्यों मालूम करो, कि ब्राह्मण से कोई झूठ नहीं बोलेगा, तो तुम ब्राह्मण का वेश धारण करो और मालूम करो कि ये लोग कौन है। ऐसे अगर पूछोगे तो कुछ बता देंगे, और मुझे मारने के लिए आए हैं तो नहीं बताएंगे कि मुझे मारने के लिए आए हैं, और अपना परिचय कुछ ऐसे दे देंगे और फिर मुझे मार देंगे। तो हो सकता है कि इनके अंदर जो है कपट भरा हो और मुझे मारने के लिए आए हैं, तो अपना परिचय सही सही परिचय नहीं देंगे, और मेरे पास आएंगे अपना मित्र जैसा परिचय दे करके और फिर मुझे मार देंगे। तो सुग्रीव को बहुत भय हो रहा है राम लक्ष्मण को देख करके, ये मुझे मार सकते हैं और सही सही पता लगाओ तो किस कौन सा वेश धारण करो, ब्राह्मण का वेश धारण करो, ब्राह्मण उसमें भी ब्रह्मचारी, ब्राह्मण भी ब्रह्मचारी है ना, तो और सत्यवादी, तो तुमसे फिर वो जो है अपना कपट नहीं छिपा सकते, तुम ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धारण करके इनसे बात करो। सुग्रीव ने कहा, भयादा है हनुमंतम कौ तो वीरवर सखे गच्छ जानी हे भद्रम ते वटुर्भूत्वा द्विजाकृति। तुम उनसे बातचीत करके इनके यहाँ आने का अभिप्राय मालूम करना, मालूम करो कि क्या इरादा है, इनके आने का क्या इरादा है मालूम करो, ऐसा ना हो कि बाली के भेजने से मुझे मारने के लिए आए हैं ये, पता लगाओ सही सही पता लगाओ, मैं बहुत डर गया हूँ। बालिना प्रेषित किंवा माम हंतुम समुपागत ताभ्याम संभाषण कृत्वा जानी ही हृदय तयो। यदि तुम्हें इनका हृदय दूषित मालूम हो, दूषित मालूम हो, पता चल जाए कि बोलते कुछ हैं और दिल में कुछ और, मुझे मारने की इच्छा है, अगर कुछ कपट मालूम पड़ा तो अंगुली से संकेत कर देना, और मैं क्या करूँगा, 1 9 2 11 मैं दूर से ही 9 2 11 हो जाऊँगा, थोड़ा सा इशारा कर देना ऐसा, और मैं 9 2 11 हो जाऊँगा दूर से ही हैं। लेकिन बड़े विनीत होकर के भेद मालूम करो, इनका भेद मालूम करो कि इनके अंदर क्या कपट है, और मुझे मारना चाहते हैं तो मैं तुरंत भागूँ, जाओ, और मैं तुम्हारी दूर से छिप करके तुमको ही देखूंगा, और तुम बस थोड़ा सा इशारा करोगे तो मैं तुरंत भाग जाऊंगा, गायब हो जाऊंगा मैं यहाँ से। यदि तो दुष्ट हृदय संज्ञाम कुरु कराग्रतः विनयावन तो भूत्वा एवं जाने ही निश्चयम्। तब हनुमान जी सुग्रीव से जो आज्ञा कहकर ब्रह्मचारी का वेश बनाकर श्री राम के पास आए, और बड़ी नम्रता से उन्हें नमस्कार करके बोले, हे पुरुष व्याघ्र, आप दोनों कौन हैं, आपकी युवावस्था है और आप बड़े वीर मालूम होते हैं, अहो अपने शरीर की कांति से आपने समस्त दिशाओं को सूर्य के समान प्रकाशमान कर रखा है, मेरा मन तो ये कहता है आप दोनों इस तीनों लोगों के रचना करने वाले पुरुष हैं। आप मानव पृथ्वी का भार उतारने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए लीलावश अपनी माया से मनुष्य रूप धारण करके विचर रहे हैं। माया मानुषाकारं चरन्ता विविलीलयां भूभारे हरणार्थाय भक्तानां पालनाय च। आप साक्षात भगवान हैं, क्षत्रिय कुमार के रूप में अवतीर्ण होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। आप लीला से ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और नाश करने में तत्पर हैं। मेरी बुद्धि में तो यही आता है कि आप सबके हृदय में विराजमान, सबके प्रेरक, परम स्वतंत्र भगवान नर नारायण ही इस श्लोक में विचर रहे हैं। नर नारायण जैसे आप की शोभा है। स्वतंत्र प्रेरको सर्व हृदय स्था विहाय विहेश्वर नर नारायण लोके चरंता विति मे मति। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, अभी हनुमान जी की बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं, श्री राम लक्ष्मण से बोल रहे हैं। क्या बोले? लक्ष्मण इस ब्रह्मचारी को देखो, अवश्य इसने संपूर्ण व्याकरण कई बार पढ़ा है। ये जो ब्रह्मचारी है बहुत शिक्षित है, लक्ष्मण जी से कहते हैं। देखो इसने इतनी बातें कही किंतु इसके बोलने में कोई अशुद्धि नहीं हो रही है, कोई भी शब्द जो है अशुद्ध नहीं निकला है, है? बहुत शिक्षित ब्रह्मचारी है राम कह रहे हैं। तब श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हे ब्राह्मण, मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मैं पिता की आज्ञा मानकर अपनी स्त्री सीता के साथ वन में आया था। यहाँ दंडकारण्य में रहता था, वहाँ किसी राक्षस ने मेरी भारिया सीता को हर लिया, उसे ढूंढने के लिए हम यहाँ आए हैं। कहिए आप कौन हैं और किसके पुत्र हैं? अहम दासरथी रामस तोयम मे लक्ष्मणो अनुजः सीतया भार्या सार्धं पितुर्वचन गौरवान् आगतस्तत्र विपने स्थितोऽहं दण्डके द्विजः तत्र भार्या हृता सीता रक्षसा केन चिन्मम तामन् वेष्टुं मिहायातो त्वं को वा कस्य वा वद। ब्रह्मचारी बोले, ब्रह्मचारी बोले, महामति सुग्रीव वानरों के राजा हैं, वे अपने चार मंत्रियों के साथ इस पर्वत के शिखर पर रहते हैं। वे दुष्ट बाली के छोटे भाई हैं, उस बाली ने उनकी स्त्री छीनकर उन्हें घर से निकाल दिया है, अतः उसके भय से वे इस ऋषिमुख पर्वत पर ही रहते हैं। हे महामते, मैं उन्हीं सुग्रीव का मंत्री और वायु का पुत्र हूँ। तन्भयादृश्य मूकाख्यम गिरेमाश्रित संतितः अहम सुग्रीव सचिवो वायुपुत्रो महामते। मेरा जन्म माता अंजना के गर्भ से हुआ है और मैं हनुमान नाम से विख्यात हूँ। हे श्री राम, आपको महाराज सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिए। वे आपकी भार्या को चुराने वाले का वध करने में आपके सहायक होंगे। आइए, यदि आपकी इच्छा हो तो अभी उनके पास चलते हैं। भार्या पे हारिणम हन्तुम सहायस्ते भविष्यति इदानीमेव गच्छामि आगच्छ यदि रोचते। श्री राम बोले, हे बानर, मैं भी उनसे मित्रता करने के लिए आया हूँ। उन मित्र वर का जो भी कुछ कार्य होगा वो मैंने संदेह पूर्ण कर दूंगा। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना रूप धारण कर श्री राम से कहा, आइए आप दोनों मेरे कंधों पर चढ़ जाइए। अपना रूप धारण कर लिया, ब्रह्मचारी के रूप में भगवान उनके कंधे पर नहीं चढ़ सकते, फिर भगवान क्षत्रिय के रूप में लीला कर रहे हैं, तो ब्रह्मचारी के कंधे में, ब्राह्मण के कंधे में क्षत्रिय थोड़ी चढ़ेगा। तो हनुमान जी ने अपना ब्रह्मचारी का रूप छोड़ दिया, अपना बानर रूप धारण किया। मैं बानर हूँ, आप मेरे कंधे में चढ़िए। बानर के कंधे में चढ़ा जा सकता है। आइए आप दोनों मेरे कंधों पर चढ़ जाइए, अब हम पर्वत के ऊपर चलते हैं जहाँ अपने मंत्रियों के सहित सुग्रीव बाली के भय से छिप कर रहते हैं। तब श्री राम और लक्ष्मण बहुत अच्छा कहे उनके कंधों पर चढ़ गए। यत्र तिष्ठति सुग्रीवो मंत्र भीरवालिनो भयान तथेति तस्यारुरोह स्कंदम रामोद लक्ष्मण। बानर हनुमान एक क्षण में ही पर्वत के शिखर पर कूद कर पहुंच गए। एक क्षण में पहुंच गए। वहां राम और लक्ष्मण एक वृक्ष की छाया में खड़े हो गए। इधर हनुमान जी ने सुग्रीव के पास जाकर उनसे हाथ जोड़कर कहा, राजन अपनी शंका दूर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपके यहाँ श्री राम और लक्ष्मण पधारे हैं, तो आपके रक्षक हैं, हाँ ये आपके शत्रु नहीं हैं, आपके रक्षा करने वाले हैं। हनुमान अपि सुग्रीवम उपगम में कृतांजलि व्यतुते भय माया तो राजन श्री राम लक्ष्मण। शीघ्र उठिए, मैंने राम के साथ आपकी मित्रता होने का योग बना दिया है। शीघ्र ही अग्नि को साक्षी करके उनसे मित्रता कीजिए। तब सुग्रीव अति प्रसन्न होकर श्री राम के पास आए और प्रसन्न मन से अपने हाथ से एक वृक्ष की शाखा तोड़कर उन्हें बैठने के लिए आसन दिया, बेंच दे दी। एक पेड़ की शाखा तोड़ करके दे दी, बैठिए इसमें, ये बेंच है आपके लिए, बैठिए, आसन दे दिया। इसी प्रकार हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को और लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को आसन दिया और सब लोग अति आनंद पूर्वक अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तदनंतर लक्ष्मण जी ने आरंभ से लेकर वन में आने और सीता जी के हरे जाने तक का श्री राम का सारा वृत्तांत सुनाया, पूरी बात बताई लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मणस्तुन ब्रवीत सर्वम राम वृत्तांतमादितम वनवासाभिगमनम सीता हरणम एवचाम। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने श्री राम से कहा, हे राजन मैं सीता जी की खोज करूंगा और शत्रु का वध करते समय भी मैं आपकी सहायता करूंगा। हे राम, इस संबंध में मैंने जो कुछ देखा है वो आपको सुनाता हूँ, सुनिए। एक दिन अपने मंत्रियों के साथ मैं पर्वत के शिखर पर बैठा था। उस समय हमने देखा कि कोई राक्षस किसी उत्तम स्त्री को आकाश मार्ग से लिए जाता है। वह राम राम कहकर विलाप कर रही थी। हमें पर्वत पर बैठे देखकर उसने तुरंत ही अपने आभूषण उतार कर एक वस्त्र में बांधे और हमारी ओर देखते हुए नीचे गिरा दिए। हे प्रभु, इसी प्रकार निरंतर विलाप करती हुई उस अबला को वो राक्षस ले गया। प्रभु, मैंने तुरंत ही उन आभूषणों को उठाकर गुफा में रख दिया। निरीक्षाधा परित्यज्य क्रोशंति तेन राक्षसां नीताहं भूषणान्यासु गुहायां अक्षिपं। प्रभु, आप उन्हें अभी देखिए और पहचानिए, वे आभूषण लाकर श्री राम को दिखाए। श्री राम ने उन्हें खोलकर देखा तो छाती से लगा लिया और हा सीते कहकर रोने लगे। विमुच राम स्तन दृष्ट्वा हासी तेति मुहुर्मुहुम हृदय निक्षिप्य तत्सर्वम रोदय प्राकृतो यथा। तब भाई लक्ष्मण ने उन्हें ढांढस बंधाकर कहा, हे श्री राम, बानरराज सुग्रीव की सहायता से युद्ध में रावण को मारकर आप शीघ्र ही जनक नंदिनी को प्राप्त करेंगे। आप शोक मत करिए। किसने कहा? लक्ष्मण ने कहा। सुग्रीव ने भी कहा, हे राम, मैं आपसे प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि रावण को युद्ध में मारकर आपको सीता दिला दूंगा। शीघ्र सुग्रीवो प्याहे हे राम प्रतिज्ञां करवाणि ते समरे रावणम हत्वा तब दास्यामि जानकी। तब हनुमान जी ने उन दोनों के पास अग्नि प्रज्वलित की। तब श्री राम और सुग्रीव दोनों ही अग्नि को साक्षी कर परस्पर एक दूसरे से भुजा फैलाकर मिले। तब सुग्रीव श्री राम के पास बैठ गए। बाहु प्रसार चालेंगे परस्परम कलमसौम समीपे रघुनाथस्य सुग्रीवा समुपाविश। और अति प्रेम पूर्वक उन्हें अपना वृत्तांत सुनाने लगे। वे बोले, मित्र अब हमारी कहानी सुनो। बाली ने पूर्व काल में मेरे साथ जो कुछ किया वो सुनाता हूँ। एक बार अति मदोन्मत्त मैं दानव का पुत्र मायावी ने किष्किंधापुरी में आकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। किसने ललकारा? मैं दानव का पुत्र मायावी किष्किंधापुरी में मेरे भाई को ललकारा। उस समय मेरा भाई बाली बहुत अच्छे व्यवहार का था, मेरा अच्छा व्यवहार था उनके साथ। वो दैत्य बड़ा भारी सिंहनाद करने लगा। बाली उसका ये दर्प ना देख सका, उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने बाहर आ उसके बड़े जोर से एक घूंसा मारा। उसके आघात से व्याकुल होकर मायावी अपनी गुफा की ओर दौड़ा। तब बाली और मैं दाहिन दोनों ही ने उसका पीछा किया। मायावी को गुफा में गया देख बाली को बड़ा रोष हुआ। उसने मुझसे कहा, तुम यहीं रहो, मैं गुफा में जाता हूँ। ऐसा कहकर वो गुफा में घुस गया और एक महीना तक उससे ना निकला। तथा प्रविष्ट मालो कै गुहाम माया विनम्रुषा वाली मामा है तिष्ठ त्वम बहिर्गच्छाम्य हम गुहाम इत्युक्त्वा विशेषा गुहाम मास में कम न निर्यय। एक महीना बीत जाने पर उस गुफा के द्वार से बहुत सा रक्त निकला। उसे देखकर ये समझ कर कि वाली मारा गया, मुझे बड़ा दुख और संताप हुआ। तब इस भय से कि कहीं बाली को मारने वाला दैत्य बाहर आकर मुझे भी ना मार डाले, उस गुफा के द्वार पर एक शिला रखकर मैं घर लौट आया और सबसे ये कह दिया कि वाली गुफा में राक्षस के हाथ से मारा गया। ये सुनकर सबको बड़ा दुख हुआ और मेरी इच्छा न होने पर भी समस्त बानर मंत्रिमंडल ने मुझे राज पद पर अभिषिक्त कर दिया। मैंने कुछ ही दिन राज शासन किया होगा कि वाली आ गया और क्रोधपूर्वक मुझसे बड़ी कड़वी कड़वी बातें कहने लगा। इस प्रकार मुझे बहुत कुछ भला बुरा कहकर वो मुझे घूसों से मारने लगा। तब मैं अत्यंत भयभीत होकर नगर छोड़कर भाग गया। हे प्रभु, मैंने संपूर्ण लोकों में घूमकर अंत में इस ऋषिमुख पर्वत की शरण ली है, क्योंकि ऋषि के सांप के भय से वो इस पर्वत पर नहीं आता है। तब से मेरी भार्या को वो दुर्मति स्वयं भोगता है और मैं स्त्री तथा घर के छिन जाने से मन ही मन कुढ़ता हुआ यहाँ रहता हूँ। आज आपके चरण कमलों का स्पर्श करने से मुझे कुछ चैन मिला है। तब श्री राम ने सुग्रीव के दुख से आतुर होकर उसके सामने प्रतिज्ञा की कि मैं बहुत ही शीघ्र तुम्हारी पत्नी को छीनने वाले तुम्हारे शत्रु का नाश कर डालूंगा। वसाम्यद्य भवत पाद है संस्पर्शात सुखितोस्मि हम मित्र दुखे न संतप्तो रामो राजीव लोचना हनिष्यामि तव देश्यम शीघ्रम भार्यापहारिणम इति प्रतिज्ञाम करोत सुग्रीवस्य पुरस्तदा। सुग्रीव ने कहा, हे राजन, वाली संपूर्ण योद्धाओं में अग्रणी है, उसको पराजित करना देवताओं के लिए भी अति कठिन है, फिर आप उसे कैसे मार सकेंगे? सुग्रीव कह रहा है, सुग्रीव ने ये बात कही अपने अनुभव से। तो सुग्रीव का अनुभव है कि अभी तक जितनी भी युद्ध हुए हैं बाली ने शत्रु का विनाश किया। हे वीर, सुनिए मैं आपको उसके बल का वृत्तांत सुनाता हूं। एक बार दुंदुभि नाम का एक बड़ा बलवान दैत्य किष्किंधापुरी में भैंसे का रूप बनाकर आया और उस महाभयानक असुर ने रात्रि के समय वाली को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी गर्जना वाली को सहन ना हुई और उसने अति क्रोध पूर्वक उस भैंसे के सिंह पकड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया तथा अपने एक पैर से उसके शरीर को दबाकर उसके महान मस्तक को अपने हाथों से मरोड़कर तोड़ डाला, उसे उछालकर पृथ्वी पर दूर फेंक दिया। हे राम, वो फिर वहां से एक युजन दूर मुनियों के आश्रम मंडल में महर्षि मतंग के आश्रम के पास जाकर गिरा। एक युजन का मतलब 12 किलोमीटर। पैर से उछाला, इतना बड़ा भैंसा पैर से उछाल करके 12 किलोमीटर दूर फेंका। बाली का कितना बल है। उससे जहां तहां बहुत सा खून बरसा। उसे देखकर मुनिवर मतंग को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने क्रोध में भरकर बाली से कहा, यदि आज से तुम कभी मेरे इस पर्वत पर आओगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगे। मतंग मुनि ने श्राप दिया। हे राम, मुनि के इस प्रकार श्राप देने से ही वो तब से ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आता है। इसीलिए मैं यहां रहता हूं उसके डर से। यथा परम भग्न सिरा मरिष्यसि न संशया एवं सप्तस्तदारभ्य ऋषिमुखं न यात्यसौ। ऐसा जानकर ही मैं यहाँ निर्भय होकर रहता हूँ। हे राम, आप जरा उस तुंदुफी दैत्य के पर्वताकार सिर को तो देखिए। उसका सिर पर्वत के बराबर। यदि आप उस मस्तक को फेंक सकेंगे तो अवश्य बाली का वध भी कर सकेंगे। आप उसके मस्तक को फेंकिए। ऐसा कहकर सुग्रीव ने वो पर्वत के समान सिर दिखलाया। उसे देखकर श्री राम ने मुस्कुराते हुए अपने पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। 10 योजन कितना होता है? 120 किलोमीटर। बाली ने 12 किलोमीटर दूर फेंका था और भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से उसको 120 किलोमीटर दूर फेंका। ये बड़े आश्चर्य की बात हुई। दृष्ट्वा रामा स्मृतम कृत्वा पादांगुष्ठेन चाक्षिपन् 10 योजन पर्यन्तम् तदद्भुतम् इवाभव। अपने मंत्रियों के सहित सुग्रीव भी वाह वाह करने लगे और फिर अपने भक्तों के एकमात्र आश्रय श्री राम से बोले, हे राम, देखिए ताल के ये 7 वृक्ष कैसे मजबूत हैं, किंतु बाली इनमें से प्रत्येक को हिलाकर अनायास ही पत्रहीन कर दिया करता था। हिला करके पत्ते रहित कर देता था। इतना जोर से हिलाता था इन वृक्षों को कि सब पत्ते गिर जाते। यदि आप एक बाण से इन सबको बेध कर इनमें छिद्र कर दें तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप अवश्य ही बाली को मार डालेंगे। एक बाण से 7ों में छेद करो, 7 ताल के वृक्ष हैं, एक बाण से 7ों में छेद करो। तब महाबली श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर अपना धनुष लेकर उसे बाण चढ़ाया और उन 7ों ताल वृक्षों को भेद कर दिया। तब वो बाण 7ों ताल फिर पर्वत और पृथ्वी को भेद कर 7ों ताल वृक्षों को भेद दिया, फिर पर्वत को भी भेद दिया, फिर पृथ्वी को भी भेद दिया। उसके बाद पहले के समान फिर आकर श्री राम के तर्कस में आ गया। तब सुग्रीव ने आश्चर्यचकित होकर श्री राम से अत्यंत हर्ष के साथ कहा, पुनरागत रामस्य तूणे पूर्ववत स्थितः ततोति हर्षात् सुग्रीवो रामम आहाति विस्मितः। हे देव, आप संपूर्ण जगत के स्वामी साक्षात भगवान हैं, इसमें संदेह नहीं। मेरे पहले के पुण्य के कारण ही आज आपसे मेरा संयोग हुआ है। देव तुम जगताम नाथा परमात्मा न संशया मत पूर्व कृत पुण्योग संगतो देमया सहा। महात्मा लोग संसार बंधन को दूर करने के लिए आपका भजन करते हैं, फिर आप प्रभु को पाकर मैं सांसारिक पदार्थों की कामना कैसे करूं? अब मैं क्यों चाहूँगा कि मुझे पत्नी मिले, मुझे राज्य मिले और मेरा शत्रु मारा जाए? अब मैं क्यों चाहूँगा कि मेरा शत्रु बाली मारा जाए, मेरी पत्नी मिल जाए, मेरा राज्य मिल जाए? मैं क्यों चाहूँगा? हे देव देवेश्वर, ये स्त्री पुत्र धन राज्य सभी आपकी माया का कार्य है, अतः अब आपके अतिरिक्त और किसी पदार्थ की मुझे इच्छा नहीं है। आप मुझ पर कृपा कीजिए। दारा पुत्रा धनम राज्यम सर्वम त्वन्माया कृतम अतो हम देव देवेश नाकांक्षे न्यत प्रसीद में। हे श्री राम, आप आनंद स्वरूप हैं। मिट्टी खोदते हुए जैसे किसी को खजाना हाथ लग जाए, उसी प्रकार आज बड़े भाग्य से मुझे आपके दर्शन हुए हैं। मैं तो मिट्टी खोद रहा था और मुझे क्या मिल गया? हीरा मिल गया। तो मुझे आप मिल गए। तो मिट्टी का खोदने का काम क्यों करूंगा? अब मिट्टी खोदते समय किसी को हीरा मिल जाए तो फिर मिट्टी क्या दोबारा खोदेगा वो? अब क्यों खोदेगा? तो अब मैं क्यों चाहूंगा अपनी पत्नी और राज्य और शत्रु का विनाश? अब मैं क्यों चाहूंगा? आनंदानुभवम त्वाद्य प्राप्तो हम भाग्य गौरवात् मृदर्थम यतमाने न निधानम इव सत्पते। आज हमारा अविद्या का बंधन कट गया। हे प्रभु, ये संसार बंधन यज्ञ दान तपस्या कर्मों से भी नहीं टूटता है, बल्कि और मजबूत हो जाता है, किंतु आपके चरण कमलों का दर्शन करते ही ये तुरंत नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अनादि विद्या संसिद्धम बंधनम छिद्य मध्यनहम यज्ञ दान तपा कर्म पूर्ते इष्टादि भिरप्य सौ नजीरते पुनर्दार्ढ्यम भजते संदृति प्रभो त्वत्पाद दर्शनात् सद्यो न समेति न संशयः। जिसका चित्त आपके स्वरूप में आधे क्षण के लिए भी निश्चल होकर संलग्न हो जाता है। आधा क्षण कितना है? एक क्षण 4 मिनट का होता है, आधा क्षण 2 मिनट। तो 2 मिनट के लिए जिसका चित्त आपके स्वरूप में लग जाए, उसका संपूर्ण अनर्थों का मूल कारण अज्ञान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः हे राम, मेरा मन सदा आप में ही लगा रहे, आपको छोड़कर और कहीं मेरा मन ना जाए। अब मुझे नहीं चाहिए पत्नी, राज्य और शत्रु का विनाश, अब मुझे नहीं चाहिए। क्षणार्थम अभी यच्चित्तम त्वयि तिष्ठत्य चंचलम तस्या ज्ञानम मनर्थानाम मूलम नश्यति तत्क्षणम् तत्तिष्ठतु मनोरामे त्वयि नान्यत्र मे सदा। जिसकी वाणी एक क्षण भी राम राम ऐसा मधुर गान करती है, जिसकी वाणी एक क्षण यानी 4 मिनट के लिए राम राम ऐसा सुमधुर गान करती है, वो ब्रह्मघाती अथवा शराबी भी क्यों ना हो, समस्त पापों से छूट जाता है। राम राम इति यद्वाणी मधुरम गायति क्षणम स ब्रह्मासुरापोवा मुच्यते सर्व पातक। हे राम, अब मुझे वाली को जीतने अथवा स्त्री का सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, मैं तो संसार बंधन को काटने वाली आपकी भक्ति चाहता हूँ। न कांक्षे विजयम राम न चादार सुखाधिकम भक्ति में वह सदा कांक्षे तो बंध विमोचनी। हे श्री राम, ये संसार आपकी माया का विलास है और मैं भी आपका ही अंश हूँ, अतः अपने चरण कमलों की भक्ति देकर मुझे इस संसार के संकट से बचाइए। तन्माया कृत संसारस तदंसो हम रघुत्तम तत्पाद भक्तिमादेश त्राहि माम भव संकटा। पहले जब मेरा चित्त आपकी माया से ढका हुआ था, मुझे अपने शत्रु मित्र और उदासीन दिखाई देते थे, किंतु हे श्री राम, अब आपके चरण कमलों का दर्शन पाते ही मुझे सब कुछ है ब्रह्म रूप ही भासता है। संसार में मेरा कौन मित्र है और कौन शत्रु? जब तक जीव आपकी माया से बंधा रहता है, तभी तक उस पर गुणों का प्रभाव पड़ता रहता है। पूर्व मित्रार्युदासीनास तन्मायावृत चेतसा आसन मेद्य भवत्पाद दर्शना देव राघव सर्वं ब्रह्मैव मे भाति कुमित्रं क्वाच मे रिपुः यावत् तन्माया बद्धः तावत् गुण विशेषता। जब तक माया का प्रभाव रहता है, तभी तक शत्रु मित्र का भेद होता है, उसके दूर होते ही समस्त भेद दूर हो जाता है, और जब तक ये अज्ञान का भेदभाव रहता है, तभी तक मृत्यु का भय रहता है। सायावदस्ति नानात्वं तावन् भवति नान्यथा यावन् नानात्वं अज्ञानात् तावत् काले कृतं भयम्। इसलिए जो पुरुष अविद्या की उपासना करता है, वो घोर अंधकार में पड़ता है, ये पुत्र स्त्री आदि संपूर्ण बंधन माया का ही है, अतः हे श्री राम अपनी दासी रूप इस माया को हमसे दूर कीजिए। माया आपकी कौन है? दासी है। आप आदेश दे दोगे तो चली जाएगी। अतो विद्याम उपास्ते यहा सोंधे तमसी मज्जति माया मूलमिदं सर्वं पुत्रदारादि बंधनम तदुसार मायां त्वं दासीं तव रघुत्तम। हे प्रभु मेरी चित्तवृत्ति सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे, वाणी आपके नाम संकीर्तन और कथा वार्ता में लगी रहे, हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें और मेरा शरीर सदा आपका अंग संग करता रहे। तत्पाद पद्मार्पित चित्त वृत्ते तन्नाव संगीत कथा सुवाणी तद्भक्त सेवा निरत करो मे तदंग संगम लभता मृदंगम। बहुत सुंदर प्रार्थना है ना? सबसे पहले क्या है कि मेरा जो चित्त है तुम्हारे चरण कमलों को अर्पित हो जाए, मेरा जो चित्त है आपके चरण कमलों में अर्पित हो जाए, पहली बात। और दूसरी प्रार्थना तो नाम संगीत कथा सुवाणी, आपके नाम के संगीत में और कथा में मेरी वाणी लगे, मेरी वाणी आपके नाम के संगीत में लगे और आपकी कथा में लगे, मतलब आपका नाम मधुर स्वर में गाऊं और आपकी कथा करूं, मेरी वाणी जो है ये दो कार्य करें। तद्भक्त सेवा निरतो करो में, और मेरे जो दोनों हाथ हैं ये आपके भक्त की सेवा में लगें। तदंग संगम लभता मदंगम, और मेरा शरीर आपके शरीर के अंग संग में लगे, मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति आपके भक्त और अपने गुरु का दर्शन करते रहें। नेत्र कौन कौन से कार्य में? आपकी मूर्ति का दर्शन करें, आपके भक्तों का दर्शन करें और अपने गुरु का दर्शन करें। कान निरंतर आपके अवतारों की लीलाओं का श्रवण करें, और मेरे पैर सदा आपके मंदिरों की यात्रा करते रहें। त्वन्मूर्ति भक्तान सुगुरुं चक्षु पश्य तुजस्त्रं सश्रुणोति कर्णः तज्जन्म कर्माणि च पाद युग्मं बृजत् तुजस्त्रं तव मंदिराणि। हे गरुड़ध्वज मेरा शरीर आपके चरण धूल से युक्त तीर्थों को धारण करे, तीर्थों के जल को धारण करे, आपके तीर्थों के जल में आपके चरण की धूल है, तो जिन तीर्थों के जल में आपके चरणों की धूल है उस जल को मेरा सिर धारण करे, मेरा शरीर धारण करे, शरीर धारण करें, स्नान करूंगा तो शरीर में वो जल लगेगा, और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम करे जिनकी शिव और ब्रह्मा भी सदैव सेवा करते हैं। अंगानि ते पादरजो विमिश्रय तीर्थानि बिभ्रत्व ही शत्रुकेतो शिरस्तदीयं भव पद्मजादैर जुष्टं पदं राम नमत्तुजस्रम। तो ये प्रथम सर्ग पूरा हुआ, किष्कंधा कांड का पहला सर्ग पूरा हुआ। तो कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे सुग्रीव की प्रार्थना पर, और जो अंतिम दो तीन श्लोकों में उन्होंने प्रार्थना की है तो उनमें क्या क्या प्रार्थना की है, इसका ही हम जो है आप लोगों से चर्चा करेंगे। सबसे पहली प्रार्थना क्या है उनकी, कौन बताएगा? चित्त आपके चरण कमलों में अर्पित हो जाए, पहला वरदान ये मांगा, मेरा चित्त आपके चरण कमलों में अर्पित हो जाए। और दूसरा वरदान मांगा, नहीं वाणी आपके नाम के संगीत में और आपकी कथा में लगे, मेरी वाणी आपके नाम के संगीत में और आपकी कथा में लगे। और तीसरा मेरे दोनों हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे, मेरे दोनों हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे, फिर मेरा शरीर आपके शरीर के संग में लगे, मेरा शरीर आपके शरीर के संग में लगे। कितने वरदान हुए? चार हैं। वाणी पहला, नहीं पहला चित्त, दूसरा वाणी, तीसरा हाथ और चौथा शरीर। अब पांचवा नेत्र किस में लगे? आपके मूर्तियों का दर्शन करना और आपके भक्तों का दर्शन करना और गुरु का दर्शन करना, ये पांचवा है। पांचवा वरदान मांगा है, मेरे नेत्र जो है आपकी मूर्ति का दर्शन करें और आपके भक्तों का दर्शन करें और अपने गुरु का दर्शन करें। इसके बाद नहीं, पैर बाद में है। उसके बाद कान, कान क्या करें? हाँ, आपके अवतारों की लीलाओं का श्रवण करें, आपके जन्म और कर्मों का श्रवण करें। मेरे कान कितना हो गया? छह हो गया। और सातवां मेरे दोनों पैर, सातवां दोनों पैर, आपके मंदिरों की यात्रा करें, मेरे दोनों पैर आपके मंदिरों की यात्रा करें। जी है ना, जी तो कितने हो गए? सात हो गए, सात वरदान हो गए। फिर आठवां वरदान क्या है? सिर, मेरा जो सिर है, नहीं नहीं अभी तो अंगानी, मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर आपके चरण की धूल से युक्त तीर्थों के जल को धारण करें। मैं अपने शरीर को गीला करूं उन तीर्थों के जल से, जिन तीर्थों के जल में आपका, आपकी चरण धूल मिली हुई है। तो शरीर है, शरीर पहले भी आ चुका है, मेरा शरीर आपके शरीर के संग में रहे, फिर शरीर फिर से आया कि अगर मैं आपके साथ रहने लायक नहीं हूँ तो ये वरदान मांगता हूँ। फिर दोबारा शरीर का वरदान मांगा क्योंकि इतना योग्य नहीं हूँ कि आपके शरीर के साथ मेरा शरीर रहेगा, तो मेरे शरीर, मेरा शरीर जो है गीला रहे उस जल से जिस जल में आपके चरणों की धूल है। कितने हो गए? आठ हो गए। नवा क्या है? नवा है सिर, नवा सिर है। सिर नमस्कार करे आपके चरणों को, जिनको नमस्कार करते हैं शिव और ब्रह्मा भी। सेवा करते हैं, आपके जिन चरणों की सेवा ब्रह्मा और शिव भी करते हैं। मैं तो सेवा करने लायक नहीं हूँ तो मैं क्या करूँ? प्रणाम करूँ, आपके सिर को प्रणाम करूँ, है ना। तो कितने हो गए? नौ, नौ हो गए, नौ वरदान हो गए। अब फिर से मैं पूछ रहा हूँ, सबसे पहला क्या है? चित्त। सबसे पहला चित्त है, चित्त से शुरू होता है और समाप्त कहाँ पर होता है? सिर। चित्त से शुरुआत होती है और सिर पर ही समाप्ति होती है ना। तो चित्त है आपके चरण कमलों में अर्पित हो। उसके बाद दूसरा वाणी, वाणी क्या करें? आपके नाम के संगीत और आपकी कथा में, ये दूसरा है वाणी। चित्त के बाद वाणी और तीसरा वाणी के बाद दोनों हाथ। दोनों हाथ क्या करें? आपके भक्तों की सेवा में लगे। तीसरा वरदान और चौथा वरदान मेरा शरीर आपके शरीर के संग में रहे। चार, तो चित्त है, वाणी, हाथ और शरीर, ठीक है। इसके बाद आँख, आँख क्या करे? आपकी मूर्तियों का दर्शन करे, आपके भक्तों का दर्शन करे और अपने गुरु का दर्शन करें। ये है पांचवा, पांचवा है आंख, और छठवा कान। कान क्या करें? आपके जन्म और कर्म के लीलाओं को सुने। छह हो गए। सातवां पैर, क्या करें? आपके मंदिरों का, आपके मंदिरों की यात्रा करें। कितने हो गए? सात। आठवां क्या है? शरीर। आठवां है शरीर, फिर से शरीर है? कि मेरा शरीर, पहले वरदान मांगा मेरा शरीर आपके शरीर के साथ रहे, लेकिन योग्य नहीं हूं मैं, तो फिर शरीर के लिए फिर क्या वरदान मांगा? जिस जल में आपके चरणों की धूल मिली है, ऐसे तीर्थों के जल से मेरा शरीर हमेशा भीगा रहे, है ना। कितने हो गए? आठ हो गए। नवा सिर, नवा है सिर। सिर क्या करे? हाँ, आपको नमन करे, आपको प्रणाम करे। आपके जो चरण हैं, इनकी विशेषता क्या है? ब्रह्मा शिव भी सेवा करते हैं, तो मैं तो सेवा करने लायक नहीं हूँ, तो मैं नमस्कार करूँगा, है ना। तो हमने अभी किष्कंधा कांड की जो कथा सुनी है, तो उसका आरंभ कैसे होता है, कौन बताएगा? इस कथा का प्रारंभ कैसे होता है?
सरोवर की सुंदरता।
हाँ, पंपा सरोवर की सुंदरता देखी, और फिर ऋषिमुख पर्वत के साथ चल रहे हैं राम लक्ष्मण, और सुग्रीव ने क्या देखा? बहुत बलवान दो वीर पुरुष आए हैं, अपरिचित हैं, अपरिचित हैं। तो क्या सोचा उसने? बाली के भेजे हुए। तो बाली ने क्यों भेजा? बाली क्यों नहीं आया? मतंग ऋषि ने साप दिया है बाली को। मतंग ऋषि ने बाली को क्यों साप दिया? भैंसा, वो एक राक्षस था, उसका नाम क्या था? मायावी। मायावी राक्षस था, मायावी नाम का राक्षस था, और मैं दानव का पुत्र था। नहीं, गलती हो गया। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। हाँ, दुंदुभि नाम का एक असुर था, वो किस रूप में आया था? भैंसे के रूप में आया था। तो उसका जो है, उन्होंने बाली ने सिर ही तोड़ दिया, मरोड़ करके सिर तोड़ दिया। किसी भैंसे का सिर मरोड़ करके कोई तोड़ सकता है? सिर अलग कर दिया मरोड़ करके, है? और उसके बाद पैर से उसका सिर उछाला, कितना दूर? 12 किलोमीटर दूर। और उसका जो खून की जो वर्षा हुई, तो मतंग मुनि का आश्रम दूषित हो गया। तो मतंग मुनि ने क्या साप दिया उसको? अगर तुम यहाँ आओगे तो सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगे। तो बाली को बता दिया कि नहीं आना, तो बाली नहीं आता था। तो सुग्रीव बाली से भयभीत होकर जहाँ जहाँ भी गया, बाली वहाँ वहाँ गया। जब सुग्रीव को फिर याद आया कि वो स्थान ही है सुरक्षित, इस स्थान में आ गया। अब सुग्रीव क्या सोच रहे हैं कि बाली तो नहीं आ सकता है, तो उसी ने इन को जो है कपट सिखा करके भेजा है, इन दो वीरों को कपट पूर्वक भेजा है, मारने के लिए मुझे। और ये जो है मेरे साथ में मित्रता करेंगे और फिर मुझे मार देंगे, है? तो हनुमान से क्या बोलते हैं कि किस रूप में तुम जाओ? ब्रह्मचारी, ब्राह्मण और फिर ब्रह्मचारी भी, उसके ऊपर भी और ब्रह्मचारी, है? क्यों? हाँ, क्योंकि ब्रह्मचारी और ब्राह्मण से कोई झूठ नहीं बोल सकता। कोई कपटी व्यक्ति होता है, तो दूसरों से तो अपना कपट कर सकता है, ये ब्राह्मण और ब्रह्मचारी से अपना कपट नहीं करेगा। तुम ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धारण करो, जिससे कि सही सही बातें मालूम पड़े। और अगर कुछ घुमा फिरा करके बोलें तो समझ जाना, मुझे इशारा कर देना, और थोड़ा सा इशारा करो तो मैं गायब हो जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा। क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है, मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं भाग जाऊंगा। तो हनुमान जी गए, हनुमान जी गए किस रूप में? ब्राह्मण ब्रह्मचारी के रूप में आए। और कैसे परिचय, कैसे बातचीत की? आप लोग कौन हैं, कैसे लगते हैं आप लोग?
आप बहुत वीर पुरुष हैं,
आप बहुत वीर पुरुष हैं, सूर्य के समान प्रकाश आपके शरीर का दशाओं में अंधकार को दूर कर रहा है।
मेरे मन में तो ऐसा लग रहा है कि आप ही साक्षात,
आप साक्षात भगवान हैं, सृष्टि के रचना पालन और संहार करने वाले, और नर नारायण के समान आप दोनों विचरण कर रहे हैं। तो श्री राम ने ब्रह्मचारी की बात सुनकर के अभी किससे बात किया? लक्ष्मण से बात किया, लक्ष्मण से बात किया, उनको सुनाते हुए कि देखो ये ब्रह्मचारी बहुत शिक्षित है, इसने बहुत विद्या सीखी अपने गुरु से, अपने गुरु की सेवा की है और बहुत बढ़िया उसने शिक्षा प्राप्त की है, क्योंकि तो इतनी बातें जो बोला है उसमें एक शब्द में भी जो है त्रुटि नहीं हुई है। व्याकरण शास्त्र का बहुत ज्ञान है। इसके बाद फिर ब्रह्मचारी से बोले राम और बहुत थोड़े शब्दों में पूरी बात बता दी, और फिर पूछा कि आप किसके पुत्र हैं और अपना परिचय दीजिए। तब फिर हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, सुग्रीव का परिचय दिया, और फिर कहा कि मैं आपकी मित्रता कराना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वीरता के सहारे सुग्रीव बाली को मार सकते हैं और सुग्रीव आपकी पत्नी की खोज कराने में सहायता कर सकते हैं, क्योंकि बंदर लोग जो है खोज करने में बहुत निपुण होते हैं, बंदर लोग बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं, इधर इधर हर जगह टटोलते हैं, खोजते हैं, तो बंदरों में विशेष ऐसा गुण होता है। तो बंदर की तो चंचलता होती है, एक दोष है, लेकिन वही दोष अब गुण बन जाएगा सीता की खोजने में। सीता की खोज करेंगे बंदर तो ये उनका गुण बन जाएगा। तो अग्नि को साक्षी देकर के मित्रता करी, है ना, और अब सुग्रीव का विचार बदल गया। हाँ, सुग्रीव ने परीक्षा ली राम की। तो सुग्रीव ने पहले क्या बताया श्री राम को? हाँ, दुंदुभी, हाँ दुंदुभी का ही सिर दिखाया कि पर्वत के समान ये सिर जो है, अगर इसको आप भी एक योजन दूर यानी 12 किलोमीटर दूर फेंक दें तो मैं मानूं कि आप बाली को मार सकते हैं। तो राम ने कितना दूर फेंका उसको?
120,
10 गुना दूर। बाली ने 12 किलोमीटर दूर फेंका था और श्री राम ने 120 किलोमीटर दूर फेंका उसका सिर। और अब सिर फेंकने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि अब तो खून नहीं बहेगा। पहले बाली जब फेंका था तो खून बहा और ऋषियों के आश्रम को दूषित किया, लेकिन अब श्री राम ने जब फेंका है तो उसमें खून वून कुछ नहीं है, तो अब कोई ऐसा दोष नहीं है। तो श्री राम का जितना भी कार्य है उसमें कोई दोष नहीं होता है, बहुत उनका कार्य जो है पूर्ण होता है, निर्दोष होता है और बहुत नपातुला होता है। उसके बाद सुग्रीव को फिर भी शंका बनी रही हैं, क्योंकि पहले खून भरा था, खून मांस था, तो मांस सूख गया है, खून सूख गया है, तो बोला कि अभी पूरी परीक्षा नहीं हुई। तो फिर दूसरी परीक्षा कैसे हुई? सात ताल के वृक्षों को हिला करके पत्तों से रहित कर देता था, मतलब कितना तेज हिलाता था इन पेड़ों को, कितनी तेजी से हिलाता था कि सब पत्ते गिर जाएं। तो क्या परीक्षा थी, क्या करें? एक बाण से सातों को आप छेद करिए। तो राम ने छेद किया कैसे? सातों को छेद करके पर्वत को भी छेद कर दिया, फिर जमीन को भी छेद किया और फिर तरकस में आ गए। श्री राम कथा महामहोत्सव की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीत राम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय।